दलित साहित्य विचारणीय मुद्दे। मराठी में 1960 के बाद से दलित साहित्य मुख्यधारा के रूप में स्थापित हो गया था। कुछ अन्य भाषाओं में 1980 के बाद दलित साहित्य पर चर्चा शुरू हुई व इसी क्रम में हिंदी में भी सदी के अंतिम दशक में दलित साहित्य चर्चा के केंद्र में आ गया है। ऐसा नहीं कि दलित जीवन को लेकर हिंदी साहित्य में रचना ने भी, हिंदी साहित्य के आदिकाल से नाथ कवियों के बल पर मध्य युग में कबीर, संत रैदास, दादी दयाल आदि से होते हुए आधुनिक काल में प्रेमचंद, निराला, रेणु, नागार्जुन, धूमिल, जगदीश चंद्र आदि का साहित्य दलित जीवन के दुख दर्दों का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करता है। लेकिन एक साहित्य धारा के रूप में दलित साहित्य 10वें दशक में ही चर्चित होना शुरू हुआ है। साथ ही इस तरह के प्रश्न भी उठने शुरू हो गए हैं कि दलितों के जीवन संबंधी लिखा साहित्य ही दलित साहित्य है या सिर्फ दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखा साहित्य ही दलित साहित्य माना जाएगा। अति उत्साही युवा दलित पीढ़ी केवल दलितों द्वारा रचित साहित्य को ही दलित साहित्य मानने को तैयार है। किसी भी गैर दलित लेखक द्वारा दलितों के जीवन को लेकर कितने भी संवेदनशील व सशक्त साहित्य को यूं पीढ़ी केवल करुणा या सहानुभूति का साहित्य ही मानती है, जिसे वे दलित साहित्य की परिभाषा में शामिल नहीं करते। हिंदी में चूंकि दलित साहित्य की परिभाषा अभी शैशवावस्था में है, अतः ऐसी चर्चाएँ काफ़ी स्वाभाविक हैं। मराठी साहित्य में ऐसी चर्चाएँ पहले भी काफ़ी गंभीरता से हो चुकी हैं। वहाँ का प्रबुद्ध दलित लेखक वर्ग दलित साहित्य को जातिगत दायरे में सीमित न रखकर व्यापक मानवीय मुक्ति के संदर्भ के रूप में व्याख्यायित करता है, तथा ऐसे तमाम लेखन को दलित साहित्य की पारिभाषिक श्रेणी में शामिल करता है जो किसी भी लेखक द्वारा क्यों न लिखा गया हो, लेकिन उसमें दलित जीवन की सच्ची व प्रमाणिक अभिव्यक्ति हो व दलितों की सच्ची मुक्ति की आकांक्षा हो। दलित साहित्य से ऐसे प्रश्न जुड़ गए हैं जिन्हें लेकर डॉक्टर एन सिंह ने दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम पुस्तक का संपादन किया है। वह इस पुस्तक में शामिल 12 लेखों में हिंदी में दलित साहित्य के विकास, आरंभ की स्थिति, दलित साहित्य की कलात्मकता, दलित कविता व कहानी पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक के 12 लेखों में डॉक्टर उर्मी शर्मा और ब्रज कुमार पांडे जैसे नाम भी शामिल हैं। वैसे दलित बनाम गैर दलित विवाद कुछ दशक पहले के प्रगतिशील या जनवादी साहित्य के दौर की भी याद दिलाता है, क्योंकि प्रगतिशील या जनवादी साहित्य मजदूर और किसान वर्गों की मुक्ति का समर्थक साहित्य माना जाता है। वहाँ भी यह सवाल उठता रहा है कि क्या गैर मजदूर या गैर किसान इन वर्गों के जीवन या उनकी मुक्ति के समर्थन में लिख सकता है। प्रगतिशील या जनवादी धारा के अधिकांश लेखक या साहित्यकार प्रायः मध्य वर्ग से आए हैं। उनमें से कुछ को ग्रामीण जीवन का व्यापक अनुभव रहा है, जैसे प्रेमचंद, नागार्जुन या रेणु इत्यादि। लेकिन मुक्तिबोध जैसे जटिल संवेदनाओं के कवि, जिनकी कविता में कोई सामान्य मजदूर या किसान शायद ही समझ पाए, वो भी प्रगतिशील या जनवादी साहित्य धारा में सम्मान्य स्थान हासिल है। सवाल वहाँ भी इसी रूप में सुलझा है कि मध्यवर्गीय लेखक की अपनी क्रांतिकारी या जनतांत्रिक चेतना से वह कुछ जीवन के सचेत अनुभवों से मजदूर किसान वर्ग के जीवन की मुक्ति की कामना कर सकता है। हाँ, प्रगतिशील या जनवादी धारा में भी मजदूर या किसान वर्ग का सच्चा व प्रमाणिक चित्र वही लेखक प्रस्तुत कर पाते हैं जिन्हें इस जीवन का निकट अनुभव रहा है। लेकिन लेखक की जन्म से मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि जो उसके अपने वश में नहीं है, के कारण उसे उस धारा से तो खारिज नहीं किया जाता रहा। दलित साहित्य की अवधारणा या उसके व्यवहारिक रूप में यह तो सही है कि दलित जीवन की प्रमाणिक अभिव्यक्ति वही लेखक कर सकता है जिसे इसका निकट अनुभव प्राप्त है। यह भी सच है कि उसकी बीमारी फटी होती है, उसी को उसकी पीड़ा भी अधिक अनुभव होती है। लेकिन जो डॉक्टर फटी बीमारी का इलाज करता है, उसे फटी बीमारी की पीड़ा का स्वयं अनुभव हो, यह तो जरूरी नहीं। वास्तव में दलित साहित्य की अवधारणा एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। वह इसे जातिगत दायरों में सीमित करना एक तरीके से साहित्य धारा के मित्रों को दूर करना व इस धारा को वस्तुगत रूप से नुकसान पहुंचाना ही ठहरता है। दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम की पूर्विका यह शब्द संपादक द्वारा ही प्रयुक्त है। मैं डॉक्टर एन सिंह हिंदी में दलित चेतना का पहला विस्फोट मध्यकाल के संत साहित्य में मानते हैं। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद, विनोबा भावे तथा गांधी के दलित संबंधी चिंतन को एक धारा में मानते हैं। रैदास, अम्बेडकर और महात्मा फूले को दूसरी धारा में मानते हैं। पहली धारा दलितों को हिंदू धर्म व समाज के दायरे में रखे हुए उनकी जीवन स्थितियों में सुधार की आकांक्षी है, जबकि दूसरी धारा समाज में अपना सम्मानजनक स्थान एक अधिकार के रूप में लड़कर प्राप्त करना चाहती है। हिंदी में दलित साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए संपादक ने दलित साहित्य के नामकरण का प्रश्न भी उठाया है। संपादक के अनुसार सभी दलित विद्वान लगभग एकमत हैं कि दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है, क्योंकि यदि कोई गैर दलित लेखक दलित समस्याओं पर लिखता है तो उसे सहानुभूति होती है, आक्रोश नहीं। स्वयं संपादक का मत इससे भिन्न है। उनके अनुसार उत्पीड़न की रचनात्मक चेतना ही दलित साहित्य है, जो शास्त्र और शस्त्र के उत्पीड़न से मानव मुक्ति के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान करती है। संपादक ने दलित साहित्य की वैचारिक प्रतिबद्धता या दूसरे शब्दों में उसके वैचारिक प्रेरणा स्रोत का प्रश्न भी उठाया है। वास्तव में महाराष्ट्र में दलित पैंथर संगठन का अमल अमेरिका में उभरे ब्लैक पैंथर के समानांतर हुआ था, जिसकी प्रेरणा में शोषण, रंग व जाति भेद से संपूर्ण मानव मुक्ति का लक्ष्य शामिल था। इसीलिए महाराष्ट्र के दलित साहित्य में दो विचारधाराएं प्रचलित रही हैं। एक धारा केवल जातिगत आधार को मानती है और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को ही दलित साहित्य व दलित मुक्ति का प्रेरणा स्रोत मानती है। एक अन्य धारा विश्व की क्रांतिकारी परंपरा से दलित प्रश्न व दलित साहित्य में वर्ग और जाति के सवालों को जोड़कर देखने की पक्षधर है। यह धारा दलित प्रश्नों को विश्व की क्रांतिकारी परिवर्तन की परंपरा अर्थात वर्ग संघर्ष द्वारा सामाजिक रूपांतर की परंपरा से तो जोड़ती ही है, लेकिन साथ में मानवीय समाज की विशिष्ट परिस्थितियों में जाति के प्रश्न को भी जोड़ती है। इस धारा से जुड़े विचारक व लेखक मार्क्स की वर्ग संघर्ष की विचारधारा को मोटे रूप में स्वीकार करते हुए उनके साथ डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार व ज्योतिबा फूले के सामाजिक क्रांतिकारी विचारों को भी जोड़ते हैं। हिंदी में दलित प्रश्न पर अधिकांश चर्चा फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के दायरे में हो रही है, क्योंकि इस प्रश्न को इस रूप में उठाने वाले स्वयं दलित कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन जो जो हिंदी के दलित मुक्ति के प्रश्न पर गंभीर चर्चा आगे बढ़ेगी तो केवल सामाजिक अर्थात जातिगत मुक्ति तक सीमित न रहकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी रूपांतरण तक यह चर्चा जाएगी और तब इसे विश्व की क्रांतिकारी परंपरा से जोड़कर देखने समझने में दलित मुक्ति की व्यापक अवधारणा केंद्र में रखनी होगी, क्योंकि दलित मुक्ति का प्रश्न विश्व मानव की व्यापक मुक्ति, रंग, जाति, लिंग भेद व इस प्रकार के आर्थिक शोषण से मुक्ति से जुड़ा हुआ है। यह सही है कि अलग अलग देशों व समाजों में मानव मुक्ति का प्रश्न वहाँ की विशिष्ट सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। जैसे कहीं रंग भेद जिसमें विश्व का महान अश्वेत साहित्य पैदा हुआ, कहीं जाति भेद जैसे भारत में जिसने दलित साहित्य को जन्म दिया, लेकिन अंततः यह तमाम साहित्यिक धाराएं जो कि विश्व मानव के अनेक स्तरों पर शोषण व दमन को प्रतिबिंबित करती हैं परस्पर संबद्ध धाराएं हैं व इन सब का अंतिम लक्ष्य भी समान है। इस अर्थ में भारतीय दलित साहित्य का संबंध एक और विश्व के अश्वेत साहित्य से है, दूसरी ओर भारत व विश्व के स्त्रीवादी साहित्य से भी। साथ ही भारत के या कुछ अति उत्साही व संकीर्ण सोच वाले दलित लेखक या विचारक मार्क्सवाद या प्रगतिवाद को कितना भी भला बुरा क्यों न कह रहे हो, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद या जनवाद में जो बुराइयां या पाखंड वे देखते हैं वह वास्तव में इन वादों में न होकर इन वादों की अभिव्यक्तियों में या हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे दलित साहित्य की धारा में भी उसी प्रकार के पाखंड या विकृतियां नजर आ सकती है जैसे इन वादों में, लेकिन यह पाखंड या विकृतियां दलित साहित्य का महत्व कम नहीं कर सकती। इस बात को जब दलित साहित्य धारा के गंभीर लेखक विचारक पहचान व समझ लेंगे तो निश्चय ही विश्व के तमाम मानवतावादी साहित्य में से इसकी मित्रता व एकजुटता बनाने में संकोच नहीं करेंगे। इस पुस्तक में संकलित 12 लेखों में प्रथम में डॉक्टर कालीचरण सनेही ने दलित शब्द की मीमांसा की और शब्द की व्युत्पत्ति से लेकर इस शब्द के विभिन्न अर्थों पर प्रकाश डाला है। आकार में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लेख डॉक्टर प्रेम शंकर कृत दलित संघर्ष संस्कृति एवं साहित्य की सफल अभिव्यक्ति। इस लेख में डॉक्टर प्रेम शंकर ने दलित साहित्य की पृष्ठभूमि व हिंदी दलित साहित्य पर व्यापक चर्चा की है। दलित पैंथर्स के घोषणा पत्र से उद्धरण देकर डॉक्टर प्रेम शंकर ने बताया है, दलित का मतलब है अनुसूचित जाति, बौद्ध, कामगार, भूमिहीन मजदूर, कृषि मजदूर, गरीब किसान, खानाबदोश जातियां, आदिवासी और नारी समाज। वास्तव में दलित पैंथर द्वारा की गई दलित शब्द की व्याख्या सर्वाधिक उचित व वस्तुगत व्याख्या है। वह इस व्याख्या को आधार मानकर यदि दलित साहित्य को देखा समझा जाए तो यह साहित्य सबसे व्यापक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य सिद्ध होगा, मराठी में ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं में। डॉक्टर प्रेम शंकर ने हिंदी के दलित साहित्य में मेरठ के झंडूदास के ख्यालों, तेन सिंह, लक्ष्मण सिंह के भजन आदि लोक साहित्य को भी शामिल किया है। लोक साहित्य के इस भंडार पर निश्चय गंभीरता से विचार होना चाहिए। डॉक्टर प्रेम शंकर ने दलित साहित्य को अम्बेडकरीय साहित्य की परिभाषा से अभिहित किया है। यह परिभाषा पुस्तक संपादक को भी स्वीकार नहीं है और न ही अन्य दलित विचारक ही इस परिभाषा को मानने को तैयार है। वैसे भी यह परिभाषा दलित साहित्य की व्यापकता को सीमित करने वाली है। प्रेम कुमार मणि, डॉक्टर सत्यनारायण व्यास, डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, मोहनदास रमेश राय, डॉक्टर एम सिंह कमल भारती आदि ने हिंदी में दलित साहित्य विशेषतः हिंदी कविता पर प्रकाश डाला है। प्रोफेसर रमेश कुमार ने हिंदी कहानियों में दलित अंकन की चर्चा की है। ब्रज कुमार पांडे ने प्रेमचंद और दलित साहित्य लेख में दिखाया है कि प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में दलित चित्रण में सिर्फ सहानुभूति नहीं वरन आक्रोश दिखाया है, ऐसा ज्वलंत आक्रोश जो कई बार स्वयं जातिगत दलित लेखन में भी नहीं मिलता। घास वाली कहानी में जो जमींदार युवक बनी सिंह भुलिया को अपनी जान में फंसाना चाहते हो तो भुलिया उसको कैसा मुंह तोड़ उत्तर देती है, मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तुम्हें कैसा लगता, तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते कि नहीं, बोलो क्या समझते हो, महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं, अपनी मर्यादा का विचार नहीं, उससे दया मांगते हैं इसलिए न कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ और नीच जात की औरत जरा सी गुड़ की धमकी या जरा से लालच तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। हिंदी में दलित साहित्य पर कुछ पुस्तकें पिछले कुछ वर्षों में सामने आई हैं जिनमें माता प्रसाद कृत हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन है। पुस्तक के शीर्षक से आभास मिलता है कि इनमें दलित साहित्य चिंतन पर गंभीर सामग्री उपलब्ध होगी, लेकिन वैसी गंभीर सामग्री वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है। अलबत्ता हिंदी में दलित साहित्य की चर्चा हो यह प्रयास इस पुस्तक में अवश्य मिलता है। हिंदी में दलित साहित्य चिंतन आगे बढ़े इसके लिए जरूरी है कि मराठी के सृजनात्मक साहित्य के हिंदी अनुवाद के साथ जो अब काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, मराठी का दलित साहित्य चिंतन भी हिंदी अनुवाद में हिंदी पाठकों को उपलब्ध हो। अंग्रेजी के माध्यम से अर्जुन डांगले संपादित पुस्तक द पॉइजन ब्रेड ही अभी तक मराठी इतर भाषी पाठकों के लिए दलित साहित्य चिंतन पर सर्वश्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध करवाती है। ऐसी पुस्तक में संकलित लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो सके तो हिंदी भाषी पाठकों को दलित साहित्य की अवधारणा व महत्व को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन डॉक्टर एन सिंह ने अपने सामर्थ्यानुसार दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम द्वारा हिंदी पाठकों में दलित साहित्य के प्रति चेतना फैलाने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने दर्द के दस्तावेज, संत कबीर दास मूल्यांकन और प्रदाय आदि पुस्तकों द्वारा भी यह दायित्व तो निभाया है व इसी क्रम में उनकी कुछ और भी पुस्तकें तैयार हैं जो हिंदी में दलित साहित्य धारा को और पुष्ट करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।